वह लोक से स्वतंत्र नहीं, संबद्ध है और उनके काव्य की भी व्यापकता और महानता का आधार है। शब्द और अर्थ एक हैं, भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं, सीता राम के समान। लेकिन सीता राम का वह संयुक्त रूप जो तुलसी का आदर्श काव्य है, उसे खिन्न बहुत प्रिय है। गिरा और अर्थ, जल और बिची के समान भिन्न अभिन्न होते हुए भी दुखियों के प्रति प्रेम से युक्त है। उनके काव्य पुरुष राम को खिन्न प्रिय हैं। गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंद और सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लोक की यही खिन्नता शब्द और अर्थ की अभिन्नता को खंडित करती है, अर्थ को पूरी तरह शब्दमय नहीं होने देती। परमार्थ पूरी तरह प्रेम में नहीं अटता। यह दीन बंधुता, पर दुख कातरता, यह खिन्न प्रियता शब्द से भिन्न होकर भी चूंकि बहुत बड़े अर्थ को व्यंजित कर देती है, इसलिए शब्द के महत्व को भी बहुत बढ़ा देती है। तुलसी काव्य और काव्यार्थ दोनों का मिलान उस अवसर पर प्रायः कर देते हैं जहां वह अत्यंत विभोर हो जाते हैं। तुलसी जहां अधिक तन्मय होते हैं, वहीं कविता का तार टूट जाता है। वे कविता की असमर्थता की पीड़ा व्यक्त करने लगते हैं। वे वर्ण का महत्व कविता का पल्ला छोड़कर सीधे सीधे बखानने लगते हैं। तुलसी की कविता मानस में संभवतः सबसे अधिक तन्मय होती है राम भरत के मिलाप के अवसर पर। वहां तुलसी का काव्य कौशल और तुलसी की भावुकता दोनों अभूतपूर्व ढंग से एक दूसरे से सहयोग करते हैं। तुलसी ने भरत को राम से सीधे सीधे नहीं मिलवा दिया है, काफी नाटकीय योजना है। राम ने भरत को नहीं देखा, भरत ने राम को देखा और भरत की आवाज लक्ष्मण ने पहचानी। लक्ष्मण तो राम की सेवा कर रहे थे, वे सेवा छोड़कर भरत को प्रणाम कैसे करते, सो तनाव की स्थिति में रहे। इधर भरत का स्नेह, उधर राम की सेवा का भार, खींची हुई पतंग की तरह उनकी गति हो गई। उन्होंने माथा नवाकर राम से इतना ही कहा, रघुनाथ भरत प्रणाम कर रहे हैं। भरत का नाम सुनते ही राम का पट एक तरफ तरकस, फिर से सुनेंगे, भरत का नाम सुनते ही राम का पट एक तरफ, तरकस एक तरफ, धनुष बाण एक तरफ, सब अस्त व्यस्त। उठे राम सनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। राम प्रेम अधीर उठे, बस अगली पंक्ति, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा में क्रियापद एक नहीं। क्रियापद कहने की फुर्सत किसे है? राम की प्रेम अधीरता को विविध प्रकार से कहने की फुर्सत किसे है? प्रेम अधीर राम को कुछ और करने की फुर्सत थी? उन्हें वस्त्र, तरकस, तीर, धनुष संभालने की फुर्सत नहीं थी, इसीलिए ये सब अस्त व्यस्त हो गए। राम ने भरत प्रणाम कर रहे हैं यह सुना और बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। बरबस से यहाँ व्यंजना की भरत ने राम का चरण पकड़ने के लिए जोर लगाया होगा, राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा दिया। जैसे राम को पट, तरकस, तीर, धनुष संभालने की फुर्सत नहीं, वैसे तुलसीदास को क्रिया व्रिया की फुर्सत नहीं। कविता राम के समानांतर यानी वर्ण के समानांतर चेष्टाएं कर रही हैं, कहना अनुचित है। वह वर्ण का ही एक और रूप है। यह मिलन देखकर सबको अपनी सुधि भूल गई। सबको अपनी सुधि भूल गई तो तुलसी को भी तो यह सब प्रत्यक्षीकृत हो रहा था। वे भी तो भक्ति और कविता के सहारे वहीं पहुंच गए थे। जब अपनापा लौटा तो उन्होंने पाया कि कविता तो काफी पीछे छूट गई। जिसे कुछ को वे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, उस सबको ज्यों का त्यों कविता नहीं संभाल सकती। शब्द समस्त अर्थ संपदा को नहीं ढो सकते। वर्ण का आवेग इतना तीव्र है कि जैसे राम की अधीरता अपने और भरत के बीच पट, धनुष, विषंग, तीर कुछ नहीं सहन कर सकती, वैसे ही वर्ण का तीव्र अनुभूति बहुत तीव्र होकर शिल्प को नहीं सह पाती। कवि की जो अनुभूति है वह जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा है उसे उसी तरह शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। शब्द अर्थ के किसी पक्ष को ही व्यंजित करते हैं, पूरे अर्थ को नहीं। लेकिन कवि को तो केवल शब्दों और उन शब्दों में समा सकने वाले अर्थ का ही सहारा है। कवि शब्द अर्थ का ही व्यापार करता है। जहां शब्द और उसके द्वारा अभिप्रेत अर्थ असमर्थ है, वहां कवि किसका अनुसरण करे। तुलसी ने राम और भरत के प्रेम मिलन के एक चित्र को आंकने में शब्दार्थ की कविता की यह सीमा बताई। राम और भरत का प्रेम मिलन मन, बुद्धि, चित्त और अहम को विस्मृत करके हो रहा है। कविता भाव संपदा को बांधने के प्रयास में रची जाती है। शब्द और शब्दों द्वारा प्रकाशित अर्थ कवि के हृदय में जो कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है उसकी छाया है। जब कवि उस प्रत्यक्ष उदित को ही देखने में तन्मय है, कवि छाया को भूल गया है, कविता कैसे हो? कहहु सुपेम प्रगट को करई, केह छायाम कवि मति अनुसरई। यह कवि की वही स्थिति है जिसमें कवि की सुमति भारत के उदित यश चंद्रमा को चकोरी की भांति एकटक निहार रही है। उसको देखने में सुमति तन्मय थी और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए काव्य रचना नहीं हो रही थी। भरत बिमल जसु विमल, विधु सुमति चकोर कुमारी। इस प्रेम मग्न स्थिति में ऊपर आने के बाद, यानी शब्द अर्थ का सहारा टटोलने के बाद, कवि उस तन्मय स्थिति की अपार भाव संपदा को व्याप्त कर पाने में शब्द और अर्थ को अक्षम पाता है। उस परमार्थ को शब्दों के अर्थ नहीं घेर पाते, लेकिन कवि तो इन्हीं शब्दों द्वारा व्यक्त अर्थ का बल है जो इस व्यक्त अर्थ के परे रह जाता है, बचा रहता है, उसकी पीड़ा उसे सालती रहती है। नट को ताल की गति पर ही नाचना है। जो ताल और गति में नहीं बंध पाता, बचा रह जाता है, उसे नर्तक अनुभव करके भी प्रकट नहीं कर पाता। कब ही अरथु आखरु बल साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा।